ओम शांति। बहुत अच्छा गीत सुना, आनंदी आनंद है। सरनीम युग का त्योहार भी आनंद है, प्रभात भी आनंद है, सब कुछ आनंद है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे दिन में दो पहलू है, एक रात है एक दिन है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अनवरत होता ही रहता है। उसी प्रकार जब साल उसमें हम 12 महीना देखते हैं, अभी दिसंबर आ रहे हैं, दिसंबर के बाद जनवरी तो नया साल होगा, उसी प्रकार कल्प का भी परिवर्तन होता है। कल्प में चार युग होता है, वो कौन सी है? सत्य, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सी युग चल रहे हैं? कलयुग, संसार के रीति से। तो कलयुग के बाद कौन सी युग आने वाला है? सतयुग। तो सतयुग किसको कहेंगे? जहां प्रकृति का सुख है, प्रकृति प्रपति जो है वो सबको सुख देंगे, प्रकृति सुख देंगे। दूसरा आत्मा, वो सुखी रहेंगे। उसके साथ जो सगे संबंधी वैभव सब सुख देंगे, तभी सतयुग होगा। तो टॉपिक दिया गया सतयुग का साक्षात्कार। तो कैसे करेंगे साक्षात्कार? एक होता है देखना, साक्षात देखना। दूसरा है दिव्य दृष्टि से देखना। लेकिन दिव्य दृष्टि का चाबी तो बाबा के पास है, तो हम कलयुग में अभी रहते सतयुग का साक्षात्कार कैसे करेंगे? उसका उपाय भी बाबा ने बहुत बताया। रात को जब सपन देखते हैं तब क्या करते हैं? बाबा ने मुरली में बोलते हैं, सारा दिन का दिनचर्या उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सतयुग का दिनचर्या साक्षात्कार कैसे करेंगे? जो हम सतयुग के बारे में सोचते रहेंगे, मन में गूंजते रहेंगे, तो उसका आंखों से भी नहीं देख सकते हो, तो अंतरांक से, दिव्य चक्षु से हम देख सकते हैं। जैसा सपन में, छोटे बचपन में हम क्या करते थे? रात को तो सो जाते थे लेकिन आकाश में उड़ते थे। बहुत का अनुभव होगा, पता नहीं रात को हमने कितने टाइम सोया है। ऐसा सोया मैंने उड़ गया, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर घूम फिर के, रात को जब सवेरे जिस टाइम माँ उठा जगाते थे, तो अब देखता हूं तो ये बिस्तर में, नहीं तो ऐसे घूमते रहते थे। ये घूमने का निशानी क्या है? ये संगम है। संगम युग बाबा ने हमें 500 रूप का ड्रिल कराते हैं, और इस अभ्यास इतना पक्का हो जाता है अंतर मन में, पूरा 84 जन्म घूमता रहता है। तो वो भी एक साक्षात्कार है, सपन देखना वो भी क्या? अच्छा, थोड़े दिन, दो तीन दिन पहले मुरली में एक बाबा ने बोला, जब रात को सोते हो तब कैसे सोना है? अशरीर बन के हल्का होके बाबा के गोद में सो जाओ, हो सकता है तुमको साक्षात्कार होगा। कोई स्वर्ग होगा, नहीं तो आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। सूक्ष्म वतन तक जा सकते हैं लेकिन परमधाम तक नहीं जा सकते, वहां जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब साक्षात्कार दिव्य दृष्टि की बात है। है बाबा वहां बैठे बैठे सबका चाबी घुमा रहे हैं। बाबा शब्द में चाबी है ना, जादू है बोलते हैं। तो ये बाबा शब्द ऐसा एक जादू है, तो वो हमारा भविष्य को सामने, दृश्य पट के सामने ले आते हैं। जैसा यज्ञ शुरू हुआ, प्रथम में ब्रह्मा बाबा भक्ति तो करते थे, 12-13 गुरु कर चुके थे, लेकिन लास्ट में इतना धन दौलत होते हुए भी कितना, बाबा बोलते थे जो दूसरे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो धर्मायु के लिए एक दो पैसा निकालते थे, एक रुपया में एक दो पैसा। बाबा कितना निकालते थे? एक आना, डबल ट्रिपल। उनसे इतना भक्ति करते थे, कोई कुछ भी हो, किसी कहीं दान पुण्य करना हो, बाबा करते थे। गुरुओं को इतना खातरी करते थे, गुरुओं भी फिदा हो जाते थे। तो कहीं भक्ति का स्थान भी छोड़ा नहीं, जगन्नाथपुरी, कश्मीर आदि आदि विभिन्न जगह सब घूम के बाबा देख लिया था, किनके अनुभवी रथ बनना था। ज्ञान मार्ग में जब पहले पहले भगवान ने क्या किया, इस भक्त को पहले ही साक्षात्कार कराया, विष्णु चतुर्भुज का कराया, स्वर्ग का कराया, विनाश का कराया। विनाश की लीला देखने के बाद वैराग्य आ गए, जार नहीं, ये राजाई गदाई क्या करना है, भागीदार को दे गए, अपने राजाई के लिए आ गए। तो साक्षात्कार से क्या होता है, अपने एक उमंग उत्साह आता है, एक नई प्राण जैसा खुशी झूम उठता है शरीर, मन और प्राण। तो ये भी हम ज्ञान के नेत्र से हम साक्षात्कार करते जाएंगे। अभी देखते हैं, जैसा दिन का प्रारंभ कहां से होता है, अमृत वेला प्रभात। तो अमृत वेला कैसा होगा, अमृत वेला के पहले क्या होगा, प्री अमृत वेला। जब सतयुग में हम सोने जाएंगे, उसके पहले क्या होगा, मनोरंजन का कार्यक्रम होगा, नाट्यशाला होंगे, कविता गीत बहुत सारे ऐसा प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारा मन खुशी में झूमते रहेंगे। तो ऐसा देख करके सुन करके आप सोएंगे, थकावट का तो नाम निशान नहीं रहेगा। और सवेरे जब जागेंगे, बाबा बोलते हैं सोना और जागना दोनों बराबर है, सिर्फ विश्राम के लिए थोड़े टाइम अपना कार्य निभाना है। और सवेरे जब जागेंगे कैसे, प्रकृतिपति आप तब क्या होगे, प्रकृतिपति, तब आपके जो पांच तत्व प्रकृति है वो स्वागत के लिए सब तैयार रहेंगे। हवा क्या करेंगे, ऐसा हवा झोंके आएंगे तो पेड़ पत्ते के जो डालियां हैं, पत्ते हैं, वो हिलेंगे और उससे विभिन्न सांच अर्थात सुर संगीत जैसा निकलेंगे। उसके साथ पंछी बहुत मधुर स्वर में गीत गाएंगे, जाओ प्रकृतिपति हमारा जग रहे, उसके लिए हम स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जो नहीं उस टाइम जागने के बाद बहुत कार्य है, नहीं अभी म्यूजिक सिस्टम भी रहेगा, जैसा यहां हमारे देखो हर घंटे में म्यूजिक बजता है ना, रिकॉर्ड बजता है, वहां भी ऑटोमेटिकली म्यूजिक सिस्टम रहेगा, वो भी संगीत माने अपना कार्य करेंगे। ये जगना हो गया, जगने के बाद आप फ्रेश आदि होके कहां का क्या करेंगे, टहलेंगे बगीचे में। तो बगीचा क्या करेंगे, वहां बहुत सारे फूल फल आपके सामने झुक जाएंगे। फूल से क्या होगा, बहुत सारे इसेंस इतर क्या बोलते हैं, सुगंधित खुशबू आपको घ्राण लेने में मदद करेंगे, आपको दिल खुश कर देंगे। तो माने वहां दुख गम की कुछ नाम निशान नहीं रहेंगे, फूल फल आपके सामने झुक जाएंगे। लेकिन तोड़ने वाला कोई अलग होगा, आप खुद तोड़ेंगे नहीं। और क्या होगा, सिर्फ आप घूमेंगे नहीं, आपके साथ पशु पंछी वो भी आपके आसपास घूमते रहेंगे और अपने स्वर में आपके स्वागत नृत्य भी करेंगे। पंछी को दिखाते हैं कहीं कंधे में, कहीं हाथ में आदि आदि दिखाते हैं। हिरण आके आपके आसपास घूमते रहेंगे, आप कुछ खिला देंगे वो भी खुश हो जाएंगे, वो आपको दुआ देंगे, ऐसा कुछ चलता रहेगा। गाय तो बहुत दूर में रहेंगे, गाय के लिए गाय बगीचा में नहीं आएंगे, वो तो स्मृति दिला रहे हैं ना, श्री कृष्ण को गाय चराते हुए दिखाते हैं, अच्छी बात है, वो आएंगे थोड़ी बाद में। उसके बाद क्या करेंगे, जब थोड़ा दिन होगा ना, पढ़ने जाएंगे, बच्चे बच्चे को तो पढ़ाई करना है ना, राजविद्या सीखना है, तो कहाँ जाएंगे, वहां ऐसा स्कूल कॉलेज जैसा नहीं होगा, गुरुगृह में जैसा होता है वहां कुछ सिस्टम होगा, वहां जाके देखेंगे, लेकिन राजविद्या जो सीखेंगे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि जिसको अभी यहाँ का हिसाब से IQ बोलते हैं 150, तो एक बार सुनने के बाद तो उसको इतना धारण होंगे, जो जाके वहां राजकरोबर चलाएंगे उसे वहां कोई आमत्त मंत्री आदि कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना इंटेलिजेंट होंगे, एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं, समझा ऐसा भी पूछने की आवश्यकता नहीं होता है। तो और क्या होगा, वहां कितना सब्जेक्ट होंगे पढ़ाई में, यहाँ जैसा हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा बोलते हैं ना, वहां भी ऐसा 4-5 सब्जेक्ट होंगे मुख्य सब्जेक्ट। पहला कौन सी, संगीत विद्या। हाँ, संगीत विद्या सभी पारंगत होंगे, वो इतना इतना इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा है और प्रकृति भी अच्छा है, तो सबके मिलके संगीत विद्या में बहुत होशियार हो जाएंगे। उसके बाद संगीत विद्या के बाद चित्रकला, बाबा बोलते हैं ना, वहां हर एक आर्टिस्ट होंगे, बड़े छोटे चित्रकार होंगे, और इतना डिजाइन प्रकृति का, कोई सीनरी का, पहाड़ी का, इतना वो चित्र बनाएंगे, देख करके मन खुश हो जाएंगे, और राजा रानी के पास, महाराजा महारानी के पास भी भेंट भी करेंगे, ऐसा ऐसा चित्र हमारे बच्चे ये सब पढ़ाई पढ़ने वाले सब तैयार करते हैं। और क्या होगा, राजविद्या, हाँ, कुछ खेल खेल के माध्यम में शिक्षा होगा, कोई यहाँ के जैसा बच्चे क्या करता है, बहुत सारे बोरी जैसा बोझ उठा के जाते हैं ना, वैसा नहीं, खेल खेल के माध्यम में शिक्षा होंगे, और वो खेल में क्या होगा, कोई नाटक करेंगे, कोई संगीत करेंगे, कोई ड्रामा करेंगे, मनोरंजन करेंगे। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पंछियों का, जानवर का आवाज करते हैं ना, ऐसा बहुत सारे हरबोला बोलते हैं, तो बहुत सारे एक ये में बहुत सारे म्यूजिक बजा के दिखाएंगे। हम जब वारसी में पहले गए थे तो एक गीत गाने वाले आए थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, तबला संगी तबला वाद्यकार वो आपको बजा के दिखाएंगे, नाम बोल दिया मनीष भाई। अच्छा, तो हमने देखा कोई तबला दी तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, तो माइक मुख में दे दिया। अच्छा, तो और इतना सुंदर म्यूजिक तबला वह बजाया, अब बात मत पूछो, तबला फेल हो जाएंगे। नहीं, वो तो हमारे वो कला मैंने नहीं अर्जन किया है, वो तो हर एक का अपना अपना होता है, तो वहां हमारे भी के भाई है, बहुत अच्छा बजाता है, हर प्रोग्राम में वही आ जाता है। बहन जी बा जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, उसका भी नाम ले लेते हैं। यहाँ भी हमने एक बार वीडियो देखा था, तो बहुत सारे साज है रखा है, लेकिन उसके वो मुंह में आवाज करके बजाते हैं, तो इस साज का ये सुर है, इस साज का ये सुर है, वो दिखाने के लिए खाली इंस्ट्रूमेंट रखा है, लेकिन वो मुंह में आवाज करता है सारे। तो ऐसा भी कलाकृति बहुत सारे अपनाते हैं। और कौन सी विद्या होगा, ये जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जियोग्राफी एक ही होगा, और वो साधारण रीति से 2-4 बातें होंगे, समझ जाएंगे। तो पढ़ाई पूरा हुआ, पढ़ाई पूरा होने के बाद क्या, भोजन में आओ। हाँ, नृत्यकला बोला ना, डांस ड्रामा बहुत सारे नृत्यकला एक साथ, तो संगीत हो गया। अच्छा, अभी भोजन में आओ, भोजन में क्या होगा, कुछ भी हो भोजन, ये तो बाबा बोलते हैं यह ब्रह्मा भोजन, लेकिन वहां 36 प्रकार व्यंजन वाला दैवी भोग होगा, देवी देवता को 56, हाँ कुछ भी लगा दो। उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन भोजन में क्या होगा, स्वादिष्ट फल होंगे। तो स्वादिष्ट फल के द्वारा आप कितना खाएंगे? 36 प्रकार जो व्यंजन होंगे कितने? थोड़े थोड़े खाएंगे। बाबा मुरली में बोला है बहुत थोड़े खाएंगे, किसी का लालच नहीं होगा जे ये मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए। ऐसा चाहिए चाहिए की बात नहीं है, सब चाहिए के पहले आपके पास सब हाजिर हो जाएंगे। प्रकृति पति के पास प्रकृति इतना स्वागत करेंगे जो चाहिए आप खाओ। तो वो फल खाके आप कितना होंगे? संतुष्ट रहेंगे। अच्छा व्यंजन पकाने के लिए क्या कौन आएंगे? सूर्य। कुछ थोड़ा बहुत कुछ पकाने का काम होगा तो ऐसा लकड़ी आदि जलाने के वो प्रदूषण करने की बात नहीं होगा। वो सूर्य सोलर सिस्टम से वो खाना पक जाएंगे। तो पहले जब हम ज्ञान में आए थे ये सुना था जो सोलर में, तब तो हमारे सूर्य शक्ति से कैसे खाना पकाएंगे? तो एक बार हमने वहां एग्जिबिशन देखने गया तो वो जो सोलर का बॉक्स है ना मिरर सिस्टम करके रखा है, तो वो मैंने खरीद करके ले आया घर को दिखाने के लिए, हमारे गांव को आसपास दिखाने के लिए, ये सोलर सिस्टम में ये खाना पकता है। तो वो तो है सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहां मधुबन में जब आए तब भी मन में जो क्यूरियोसिटी है ना वो है। एक बार सुना जे मानेश्वर जहां गुलजार दादी को रखते थे पॉल्यूशन के कारण, दिल्ली मानेश्वर दिल्ली से थोड़ा दूर है, वहां सोलर सिस्टम लगाया गया और वहां सोलर सिस्टम से खाना पकाते हैं। खास देखने के लिए एक बार मुझे अवसर मिला है, हम लोग वारसी में सेवा में गए और वारसी से नजदीक वो मानेश्वर है, तो वहां जाके 2-3 बार हमने देख के खाना कैसे पकाता है वो खाना खा के भी आया। तो हमने सोचा था बाबा कितने साल पहले बोल रहे थे ब्रह्मा बाबा, प्राय देखो 80 साल पहले, तो तब उन्होंने बोल दिया जे ऐसा ऐसा इन्वेंशन निकलेंगे। तो ये कैसे कैसे देखा उन्होंने? उन्होंने भी तो ऐसा साक्षात्कार किया होगा ना, तब तो बोल रहे हैं और क्या कॉन्फिडेंस एकदम निश्चय बुद्धि से। अरे शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं ना, कौन बोलता है? शिव बाबा का उच्चारण ब्रह्मा बाबा का आचरण, यही तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये यहाँ कहाँ किसके बदौलत से आए हैं? ये दोनों के बदौलत से इधर ही पहुंचे हैं। तो खाना कौन पकाएगा? ये सूर्य। हाँ सूर्य के किरण सोलर सिस्टम, सूर्य देवता बोलते है, इतना देते है इसलिए उसको देवता नाम दिया गया भक्ति मार्ग में। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? नहीं दिन में तो थोड़ा बहुत कार्य आदि करना है, कारोबार होगा ना। हाँ कुछ तो कारोबार कैसे चलेगा? यहां मधुबन में एक बार बाबा ने बोला जो हमारे यहाँ जो 40-50 डिपार्टमेंट है कोई किसी से खरीद करता है? ऐसा नहीं, एक दूसरे को जाता है, आपके पास क्या है आपके पास क्या है ये लो लो ये दे दो, एक्सचेंज विनिमय। इसी रीति से हमारा कारोबार चलेगा। फिर भी कुछ मार्जिन है, करेंसी रखा है, अश्रुपियां रखा है, उसके देके कुछ लेना देना वो भी चलेगा, लेकिन बिजनेस के बारे सिस्टम में नहीं, लेन देन के हिसाब से। और एक करेंसी का एक अश्रुपी का कितना कीमत है? अभी एक बार म्यूजियम में गया, अभी तो छोटा जो लास्ट में अश्रुपी है उसका कीमत अभी 60,000 हो गया, लेकिन हमने राम सीता का एक म्यूजियम में कॉइन देखा है उसका 1.5 लाख करीब अभी कीमत है। हाँ सोने की ओरिजिनल एकदम, तो सोने की आज एकदम 24 कैरेट सोना की उन्होंने बोला प्राय 1.5-2 तोला माने 15-20 ग्राम के अंदर होगा ऐसा कुछ। हाँ तो कितना कीमत है देखो। तो अभी हिसाब से आप ये करो कि कितना हम लोग वहां धनाढ्य परिवार में होंगे। हाँ उसके बाद क्या होगा? शाम के टाइम हम टहलेंगे घूमेंगे और प्रकृति भी स्वागत करते रहेंगे, वहां भी सांझ बजता रहेगा, बहुत सारे म्यूजिक बजता रहेगा, हम लोग बहुत आराम से घूमते फिरते रहेंगे। हाँ अभी आ रहा हूं ना। अभी दिन में हम लोग जब काम काज कुछ नहीं तो क्या करेंगे, परिवार में हर एक के पास पुष्पक विमान होगा इधर उधर जाने के लिए। तो हमने बोला वायु आपके कैसे स्वागत करते हैं, अभी आकाश कैसे स्वागत करेंगे, वो पूरा राजपथ तैयार करके रखेंगे, आप जो जाएंगे घूमेंगे आएंगे आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ देखते हैं यहाँ उल्का गिरता है, कोई एक दूसरे ग्रह से टकराव होता है, लोग के भयभीत हो जाता है, मरने का डर होता है, वहां तो मरने का ही डर नहीं है, अमर दुनिया है, पहले से बाबा यहाँ से सेटिंग करके रख रहे हैं अभी है? तो वहां जाके फुल प्रूफ एक्सीडेंट प्रूफ हमारे पुष्पक विमान कहीं कहीं भी जगह ये नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, एक 8 साल का बच्चा भी वो चला है। हाँ नहीं अव्यक्त वाणी में भी है, अव्यक्त वाणी में भी 80 साल और 2 तारीख का मूल्य आप देख लेना, 2 8 साल का बच्चा भी वो चलाएंगे। क्या एक दो बटन दबाना है, जाना है आना है बस, और कुछ नहीं। दूसरा बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होता है आपको पता है, ये जब कोणार्क का मंदिर तैयार हुआ था ना, तो उसके ऊपर का जो माने तोड़ के ले गया अंग्रेज, वो बिठा नहीं पा रहा था, तो जो मिस्त्री मेन कारीगर ये घर से गया था, तो उसका बच्चा तब गर्भ में थे, वहां जब गए राजा कोई ने वो सेट नहीं कर पा रहे है, राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया 1 महीने के अंदर अगर नहीं होता है तो कोई कर नहीं सकते, तो जितना भी मिस्त्री है ना सबका गर्दन काटा जाएगा। ये ढोंडरा पीटते पीटते जो बच्चा जहां है ना वो 10-11 साल का हो गया, तो वहां आके पहुंचे, क्या बात है, तो उन्होंने उसको पकड़ा तो बोला चलो मुझे ले चलो क्या काम है, तो वहां लेके उन्होंने वहां बिठा दिया। कितना उसका दिमाग है, है? तो कोई भी होगा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और उस दिन काल में हम बताया ना वो हावड़ा का ब्रिज का जो कौन नक्शा बनाया था, एक 9th क्लास के बच्चे बन रहे थे, उसका 12 साल उम्र था, और उसने इतना नक्शा बना दिया, हावड़ा ब्रिज तैयार हो गया। हावड़ा ब्रिज तब ऐसा ओपन होता था, शिप जाते थे फिर जाते थे तो बंद हो जाते थे, तो कितना इंटेलिजेंट देखो बच्चे का दिमाग। तो क्या बोल रहे थे, कहां थे, पुष्पक विमान। तो फुल प्रूफ होगा विमान, कौन तैयार करेगा, यहाँ को जो जितना इंजीनियर है ना दिमाग लगाने वाले सारे देश को दिमाग से चलाते हैं इंजीनियर, तो वो जाके वहां हमारे अच्छा अच्छा कार्य में निर्माण करेंगे। लेकिन राज्य फैमिली में रॉयल फैमिली में नहीं, दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा इन्वेंशन जो हुनर लेके जाते हैं ना, तो वो उसके द्वारा वो फुल प्रूफ विमान तैयार करेंगे। अच्छा वहां जाके हम लोग पिकनिक करेंगे, जब पिकनिक करने जाएंगे एक परिवार का जौथ बड़ा विमान होता है, 4 हो 6 हो, घर में तो 6 होता है टोटल, बच्चे दोनों होंगे, भाई बहन माता पिता दोनों होंगे, दादा दादी होंगे, बस इतने ही है घर का परिवार टोटल, ज्यादा से ज्यादा 6, और 6 परिवार के लिए महल कितना बड़ा होंगे, बहुत बड़ा महल होंगे। बाबा बोलते हैं एक प्रजा का आबू जितना जमीन, आबू माने आबू रोड से लेकर यहां तक इतना सर्कल कर लो, कितना बड़ा जमीन होगा, तो उसके अंदर वो महल होगा, उसके हर घर में घर का जो और डबल ट्रिपल 100 मंजिला ऐसा नहीं होगा, सिंगल स्टोरी, और हर एक घर के ऊपर हेलीपैड होंगे, और हाँ घर के ऊपर ही, घर के ऊपर हेलीपैड होंगे नीचे नहीं, और हर एक का पर्सनल एक एक विमान पुष्पक विमान, और सारा संसार में जितना जो 6 आदमी वो एक साथ एक बार जाएंगे, उसके लिए भी एक, तो 6-7 तो होंगे हर घर में, हाँ 7 होंगे। अभी आप देखो तो पुष्पक विमान हो गया, हम लोग इधर उधर जाके पिकनिक करेंगे, कहाँ पिकनिक करेंगे, बाबा बोलते हैं ये जो लंदन अमेरिका वहां नहीं रहेंगे, तो वहां क्या होगा, ये जो लंदन अमेरिका जहां जहां हमारे बाबा का सेंटर है वो पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे, वहां महल आदि नहीं होगा, रहने के लिए छोटा माने दो चार आदमी रहेंगे और यहाँ जो जाएंगे पिकनिक करेंगे फिर वापिस आ जाएंगे। एकोमोडेशन की जरूरत नहीं, वहां तो मनोरंजन करने जाएंगे। विमान कितना गति में जा रहे हैं, बाबा बोलते हैं यहाँ जो फोन में बात करते हो उसी स्पीड से जाएंगे। कभी बोलते हैं बाबा हवा से भी तेज, हवा तो 1120 फीट सेकंड में जाते हैं लेकिन फोन में बात करते थे इस सेकंड में कहां, ये वर्ल्ड के उस पार भी पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार उसी गति में विमान चलेंगे, तो वहां एकोमोडेशन की कोई जरूरत नहीं, हम तो वहां जाके पिकनिक करेंगे, मनोरंजन करेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। तो पिकनिक हो गया, महल कैसे बनाएंगे, ये जो इंजीनियर बोला ना ऐसा हुनर ले जाएंगे, हमारे प्रसाद महल बड़े बड़े महल होंगे और उसका ईंट क्या कौन सी होगा, यहां जैसा मिट्टी का ईंट होता है वहां सोने के ईंट से बनेंगे। और सोने के ईंट कल मुरली में था ना, ये बॉम्बे क्या है जादू का नगरी बोलते हैं ना, वहां का एक पत्थर के बराबर भी नहीं है, तो कितना वहां वैभव होगा देखो। तो ऐसा तो वहां जो महल होगा और महलों में क्या होगा, हीरे जहरत जड़ित होंगे और चमकते रहेंगे। रात को दिन में तो लाइट की जरूरत नहीं होता है, रात को कहीं एक जगह थोड़ा सा लाइट जलाएंगे तो हर जगह जगमग जाएंगे और पता नहीं चलेगा कहां से वो लाइट आ रहे हैं। आप लोग कहीं सो तो नहीं जा रहे ना, सतयुग में पहुंच गए तो क्योंकि रात की बात चल रहे है ना वो सारे जगमग हो जाएंगे एकदम पूरा, कहां से लाइट आ रहे कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ वो भी आ रहा हूं। तो वहां प्रकृति शुद्ध होने के कारण, निर्मल होने के कारण एक चंद्रमा चार चंद्रमा का काम करेंगे, तो रोशनी इतना आएंगे जैसा दिन में दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा कम होगा लेकिन वो शीतल रोशनी ये गर्मी रोशनी ये दोनों फर्क होगा। अभी देखो लॉकडाउन होने के कारण जल कितना साफ हो गए नदी का, आकाश भी कितना साफ हो गए। कोई बोलता है अमरनाथ का पहाड़ इतना दूर से दिखाई पड़ता है, हम लोग आज तक जिंदगी में भी देखा नहीं। तो हवा हवा में धुंध होता है ना, मैल होता है, वो साफ हो जाए तो सब कुछ साफ होगा। तो प्रकृति साफ हो गया तो हमारा बुद्धि भी कैसे होगा, स्वच्छ हो जाएगा। अब यह आ जाओ कहां आएंगे, पिकनिक तो हो गया ना, वो बार बार इतना करने की लालच नहीं होगा, जब आपको चाहिए वो तो आपके सामने सब कुछ हाजिर हो जाएगा, ये शाम को चाय टोली ब्रेकफास्ट आदि ये सब कुछ जरूरत नहीं होगा। तो हाँ रात को तो थोड़ा बहुत खाना खाके सो जाएंगे। अच्छा अभी आते हैं कारुनेशन के बारे में, राज्याभिषेक जिसको बोलते हैं वो बहुत धूमधाम से होगा। यहाँ जैसा दिवाली मनाते हैं ना, बहुत धूमधाम से लाइट जगाते हैं, रोशनी जगाते हैं, तो बाबा कभी कभी बोलता है वहां लाइट आदि जगाने की जरूरत नहीं लेकिन सबका आत्मा का ज्योति जगा हुआ है, फिर भी उत्सव एक मनाएंगे वो कारुनेशन डे राज्याभिषेक का दिन। उसके पहले आता हूं बच्चा जन्म, बच्चे जन्म कब हो गए, जब उम्र बोलते हैं 150 साल, उसका आधा 75 70 और 80 के बीच में बच्चे आएंगे, बच्चा पहला बच्चा आएंगे राजकुमार होंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ माने इतना वैभव होगा, तो गोल्डन स्पून इन माउथ जन्म मात्र सोने के चम्मच से दूध पिलाएंगे और बच्चा जन्मते रोएंगे क्या? हंसेंगे। यहां बच्चा जो रोते नहीं उसको रुलाते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं उसको थपथपाते हैं, थपकी देते हैं, कहीं ऐसा चिमटी देते हैं ताकि वो रोए, उसको सौगुण मानते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं, रोने के रोने अप्रूफ, जन्म से क्यों रोए, वो हंसेंगे खिलेंगे। तो दिखाते हैं वो श्री कृष्ण के हाथ में मुरली। तो मुरली कौन सी होंगे? रत्न जड़ित मुरली। बच्चा खेलेंगे ना तो रत्न जड़ित रत्न से खेलेंगे बच्चे। बाबा बोलते हैं यहाँ ज्ञान रत्न से बच्चे खेलते हैं, तो वहां रत्न से खेलेंगे, हीरे जहरात आदि आदि जो रत्न होंगे वहां खेलते हैं। यहाँ बच्चे जन्मते हैं तो बोलते हैं मिट्टी में अगर सुलाओ तो उसको अर्थिंग मिलता है, करंट मिलता है, शरीर स्वस्थ होते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं वहां सतयुग में बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखेंगे, प्रकृति इतना स्वतः प्रधान होंगे, ऑटोमेटिक उसको ऊर्जा मिलेगा, बच्चे हर टाइम गलीचे में रहेंगे और उसके पालना करने के लिए बहुत सारे दास दासियां होंगे, कोई खिलाएंगे, कोई नहलाएंगे, कोई खेल पाल कराएंगे, ऐसा अलग अलग तरीके से वहां बच्चों को संभाल करेंगे। और शादी के टाइम भी दहेज में बहुत सारे दास दासियां मिलते हैं, तो इनों का सब काम होता है। तो अभी देखते हैं, तो वो जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, खेल पाल करके हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब 36 साल उम्र होंगे तब उसका कारुनेशन शादी हो गए, और शादी के होने के बाद जब वो उसको वरण करेंगे ना घर में, तो माता पिता क्या करेंगे, उसका पैर धुलाई करके सिंहासन में बिठाएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न है बाप होके बच्चों का क्यों पैर धुलाई करेंगे। जब उसको राज सिंहासन में बिठाते हैं वो क्या हो गए, कौन हो गए, वो राज्य के माता पिता, प्रजापालक। तो बाप क्या बन गए, उसका बच्चा बन गए ना। मैंने एक बार शादी में गया था, उस टाइम देखा है शादी होने के बाद जब घर में आए ना, उसको बिठा के बड़ा एक थाल होता है, थाल में पंच धातु रखा है और उसमें चावल रखा है और कुछ फूल रखा है, हल्दी का पानी रखा है और एक शंख, वो माता पिता दोनों पकड़ के ऐसा थोड़ा सा पानी ऐसा गिरा दिया। अभी बाबा जो यहां मुरली में बोलते हैं जो पेट धुलाई करेंगे, तब मुझे स्मृति आया, अरे ये प्रथा अभी भी चल रहे है। लेकिन अभी कलयुग होने के कारण ऐसा अरेंजमेंट शादी बहुत कम हो चुके हैं। और वो किसको करते हैं, छोटे बच्चे जो 9 साल बच्ची होते हैं और 12-13 साल बच्चा होता है उसका जब शादी होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, बड़ों को इतना नहीं करते हैं। बड़ों का हमने देखा नहीं, छोटा एक ही देखा है जिंदगी में, उसको ऐसा किया था। तो अभी मैं जो बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, वो स्मृति माता पिता क्यों उसको करते हैं, तो क्योंकि वो राज्य का मालिक है, तो माता पिता उसके सामने प्रजा जैसा हो गया ना, बच्चे जैसा हो गया। अभी इसका जो खुशियां, उसमें क्या है, खुशियां मनाने के लिए राज्य के हर जगह में कोने कोने सब खुशियां मनाएंगे, कोई नृत्य करेंगे, कोई डांस करेंगे, कोई लाइट जलाएंगे, कुछ मने ऐसा सिस्टम होगा, वहां जाके सब देखेंगे। और बच्चे भी जब जन्म होगा तब प्रकृति कैसे स्वागत करेंगे, प्रकृति झूमेंगे। बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं बिजलियां चमक जाएंगे, चारों तरफ लाइट ही लाइट होगा, क्योंकि प्रकृतिपति आ रहे हैं, उसका स्वागत के लिए कहीं सांझ माने जो म्यूजिक वो भी बजता रहेगा, ऊपर से पुष्प बरसन जिसको गुलाबासी बोलते हैं, तो वो भी होगा। तो ऐसा करते करते महल इतना सुंदर हो जाएगा, उसके अंदर वो प्रकृतिपति झूमते झूमते आएंगे। हाँ, अच्छा वहां ड्रेस कैसे होगा? ड्रेस तो एकदम मखमल वाला होगा। आप देखेंगे वो लक्ष्मी नारायण का पीछे वाला वो प्रकृति माने दास दासियां कहीं उठाते हैं ऐसा दिखाते हैं, बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं, तो इतना शानदार ड्रेस होंगे। तो अब बात मुझे उसको कीमत कोई कर नहीं पाएंगे, उसमें रतन जड़ित कुछ कार्य भी होगा, कुछ ऐसा होगा, तो वहां से इतना लाइट गिरेंगे तो इतना चमकेंगे लोग देख के एकदम मनमुग्ध हो जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। और जो ड्रेस एक बार पहनते हैं वो बाबा कभी कभी बोलते हैं ये ड्रेस दूसरी बार नहीं पहनेंगे, हर कार्य में हर परिस्थिति में अलग अलग ड्रेस होंगे। अब देखो सारा दिन में जगन्नाथपुरी आप गए होंगे, वहां ऐसा दिन में चार माने चार समय में चार बार ड्रेस चेंज कराते हैं, नहाने का ड्रेस अलग होगा, सोने का ड्रेस अलग होगा रात को, फिर उसको जगाएंगे वो ड्रेस अलग होगा, नहाने के टाइम अलग होगा, अभिषेक के टाइम अलग होगा, फिर जब सिंहासन में बैठते हैं तो जगन्नाथ कौन है? जगत का नाथ है ना। तो ये यहाँ का सतयुग का यादगार थोड़ा यहाँ रखा है, लेकिन सतयुग में कोई बीमार में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी दिखाते हैं साल में 14 दिन वो क्वारंटाइन में रहते हैं, बीमार में पड़ते हैं, उसके लिए भी दवाई मुकरर रहता है, इस जड़ी बूटी ये करके पीस के थोड़ा उसको पिला देते हैं। इसका रहस्य क्या है? वो वहां मेला चलता है ना, रथ यात्रा बोलते हैं, उसके पहले वो तैयारी करते हैं, रथ तैयारी करते हैं, उसको सिंहासन बनाते हैं, सब कुछ नया तैयार होता है, पुराने में नहीं बैठते हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेस रख रखा है, अभी बीमार है, क्वारंटाइन में है, 14 दिन के बाद वो खुलेंगे, दर्शन मिलेगा। तो अच्छा अभी देखते हैं, हाँ राज्य कारोबार कैसे चलेगा। राजगद्दी में लक्ष्मी नारायण बैठ गए, यहां जैसा देश का कार्य चलाते हैं ना मिनिस्टर, राज्यसभा गठन होता है, लोकसभा गठन होता है, उसके बाद मिनिस्ट्री होते हैं, उसके बाद राज्य चलाते हैं, लेकिन वहां सर्वे सर्वा कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण। और वो इतना विचक्षण होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कोई अमात्य व मंत्री आदि रखने की जरूरत नहीं। हाँ साथ ही रहेंगे राजकारोबार, इधर उधर ये करना है ये करना है तो निर्देश तो देंगे, और कोई जाके तो कुछ करेंगे, ऐसा साथ ही रहेंगे। वहां का भाषा कौन सी होंगे? बाबा बोलते हैं शुद्ध हिंदी, देवनागरी भाषा, एक भाषा का शब्द एक ही होगा। यहां जैसा अलग अलग अर्थ होता है ना, परिस्थिति के टाइम अलग अलग होता है, वहां ऐसा नहीं होगा, एक भाषा का एक ही अर्थ होगा, और इतना मधुर शब्द होगा, जैसे यहाँ का बहुत सारे शब्द है ना वो वहां डिक्शनरी में भी नहीं होगा, जैसा डॉक्टर का, जैसा मरीज का, दवाई का, ये सारे जेल, चोर, डाकू, ये सब शब्द ही वहां नहीं होगा, अविद्या हो जाएंगे। हाँ वही, हाँ हाँ ऐसे ही हो गए। अच्छा यहाँ जैसा पुरुष प्रधान देश है ना, घर का मालिक कौन है? पुरुष के बोलते हैं ना, लेकिन वहां नाम पहले लक्ष्मी, उसके बाद नारायण, ऐसा बाबा मुरली में बताते हैं। हाँ तो राजगद्दी में कौन बैठेंगे? अकेला नारायण नहीं, दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों राजगद्दी में बैठेंगे और दोनों राजकार्य चलाएंगे। राज्यसभा जो होगा उसमें कौन कौन आएंगे? राज्यसभा कुछ तो होगा ना, तो जो रॉयल फैमिली है, बड़े बड़े साहूकार है, उनको निमंत्रण देंगे, वो राज माने सभा में आएंगे, कुछ डिस्कस तो होगा ना, राजा कुछ बोलेंगे, वो लोग सुनेंगे, कैसे अगले साल चलेंगे। जैसा यहाँ पंचवार्षिक परिकल्पना होता है ना, तो 5 साल के लिए वहाँ राजा ऐसा बुलाएंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं लेकिन बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, फिर उसी अनुसार राज्य कारोबार चलेगा। भाषा तो बोल दिया, अभी लास्ट है सत्विक के कितना गद्दी चलेंगे, 8 गद्दी। 8 गद्दी के बाद त्रेता युग शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं मुरली में बाबा ने इसको उल्लेख नहीं किया है कैसे त्रेता युग होगा, लेकिन बाबा ने बोला मुरली में भी है, जो ऐसा नहीं वो त्रेता युगी राजा ऐसे आके छीन लिया, ऐसा नहीं होगा। वो जो यहाँ लक्ष्मी नारायण है उसको स्वागत करके वहां उसको जैसा पैर धुला, जैसा बच्चे राजगद्दी में बैठते हैं ना, पैर धुला करके उसको सिंहासन में बिठाते हैं, उसी प्रकार होगा। तो मेरे ख्याल से एक बात आए, वो क्या होगा, जब 8वें जन्म के बाद 9वें जन्म होंगे ना, तो लगता है बच्चा पहले नहीं आएंगे, बच्ची आएंगे। अच्छा, बच्ची को पहले शादी करेंगे, शादी देंगे, तो बच्चे को पहले शादी देंगे तो कौन आएगा, दामाद आएंगे। तो उसको लगता है, मेरे ख्याल से, ये दूसरे किसी का ओपिनियन नहीं है, मैं अपने विचार सागर मंथन करके रख रहा हूं, ताकि उसको जब समर्पण कर देंगे, वो उसको राजगद्दी में बिठाएंगे, तब त्रेतायुग शुरू हो सकता है ऐसा। तो अभी आप देखो, सतयुग से जन्म से लेकर अभी तक हमने सतयुग का कुछ बारे कुछ बात बताई, लेकिन पूरा बात नहीं है, ये तो बहुत बातें हैं, लेकिन समय के संक्षिप्त के होने के कारण मैं थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, और एक चीज है, ड्रेस हो गया। जैसा बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, यहाँ जो बक्तावर हो जाते हैं, ज्ञान में आने के बाद ज्ञान छोड़ के चला जाता है, वो वहां जाके क्या बनेंगे, चंडाल बनेंगे। लेकिन चंडाल शब्द नहीं रहेगा, कार्य करेंगे। चंडल मतलब शमशान घाट में जो रहता है, मृत शरीर को जो दाह करते हैं, तो वो सब कार्य जो हो गए ना, बाबा भी बोलते हैं साफ सुथरा के लिए, जैसे यहाँ मेहतर को बोलते हैं, ऐसा काम करेंगे। कोई जो यहाँ बाबा बोलते हैं ना, यहाँ काम काज कुछ नहीं करते, खाते पीते रहे, वहां जाके झाड़ू लगाएंगे। तो ऐसा जिन्होंने अपना पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर रहे यहाँ संगम युग में, वहां जाके छोटा मोटा पद मिलेंगे, लेकिन वो शब्द नहीं रहेगा, लेकिन सबको दृष्टि सबके प्रति समान रहेगा। वो भी संसार के राज्य के मालिक है, हम भी मालिक है, ऐसा हीन भावना नहीं रहेगा। वो छोटा काम कर रहे, ये बड़ा काम कर रहे। तो ऐसे हम सतयुग का थोड़ा सा साक्षात्कार आप लोग को कराया। अभी आप इससे बहुत और भी अच्छे अच्छे पॉइंट जोड़ जोड़ के अपने साक्षात्कार कर सकते हैं, ताकि अपना जीवन और भी मनमोहक हो जाए। अच्छी पॉइंट याद करा दिया। तो वहां हम लोग कहाँ नहाएंगे, जल कैसे होगा? बाबा बोलते हैं वहां बारिश के पानी पहाड़ पर्वत से, जब बारिश होंगे वहां से ऊपर से बहते बहते आएंगे, और पानी इतना ताकतवर होंगे तो यहाँ का जैसा दूध को सुषुम आहार बोलते हैं ना, वो पानी में उतना मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं घी दूध की नदियां बहेगी, और झरने से पानी इतना माने सुंदर संगीत के रूप में आएंगे, तो वहां जाके बोलते हैं नहाएंगे। लेकिन बहनों का अलग होगा, भाइयों का अलग होगा, ऐसा तो माने मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, हाँ अलग अलग जगह हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना बाबा। तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं कैसे काम करते हैं, सारे सिस्टेमेटिक होंगे। अच्छा, दूसरा यमुने के किनारे पर जब हम वहां खेलपाल करेंगे, तो बोलते हैं राजकुमार, जरूर राजकुमार राजाओं का बच्चा और राजा का बच्ची होंगे, तब तो वहां खेलपाल करेंगे। तो हर एक अलग अलग पुष्पक विमान में आएंगे खेलपाल करने, तो वहां खेलपाल करेंगे, अपने घर में चले जाएंगे। तो और वो पशु पंछी भी हिंसक कोई नहीं होंगे, अहिंसक होंगे, क्योंकि माने अहिंसक दुनिया है ना, सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बोलते हैं ना, तो सभी अहिंसक होंगे तो सबका आहार कैसे होगा? जैसा सब सभी तृणभोजी बोलते हैं ना, इन्होंने एक बात बोला था, वहां गाय गाय आदि कहाँ पलेंगे? वो पलने के लिए राज्य से बहुत दूर होंगे, गौशाला होंगे, और वहां गौशाला का भी मुखिया जो राजा है ना वो अलग होंगे, वो हेलीकॉप्टर से दूध राज्य में ले आएंगे, जो जहां बड़े बड़े महल होता है वहां आएंगे। तो देखो वहां सभी नृत्य कला में पारंगत होंगे। श्री कृष्ण का आठ पश्चात कैसे दिखाते हैं? मुरली बजाते हुए शरीर को सीधा कभी नहीं दिखाते हैं, टेढ़ा माने नृत्य भंगी। तो हरेक का जीवन खुशहाल होगा, नृत्य कला में पारंगत होंगे। तो ऐसा हमारा सतयुग होगा। और सतयुग का नाम सुनते श्री कृष्ण बाबा दो दिन पहले मुरली में बोला है ना, बच्चे को कितना प्यार करते हैं, लेकिन करना चाहिए दोनों को, राधा और कृष्ण को। हाँ, बच्चा वारिस बनते हैं इसीलिए उसको जास्ती माताएं प्यार करते हैं, माताएं सभी प्यार करते हैं और उसको झूला में झुलाते हैं, रतन जोड़ित झूला में झुलाएंगे, कभी उसको मिट्टी में पाँव नहीं रखेंगे। तो ऐसा सतयुग का सिनेरियो आप आंखों के सामने ले आएंगे, मन में दिमाग में ले आएंगे, तो रात दिन घूमता रहेगा, तो रात को सोते टाइम भी आपका साक्षात्कार होता रहेगा, जागते टाइम भी आप देखेंगे। पहले पहले जब हम मधुबन में आए तब जैसा मेरा पांव एकदम जमीन पे नहीं, ऐसा जैसे उड़ रहा हूं। रात को सोते टाइम क्या होता है, तो सो गया ना, देखता हूं तारामंडल, अरे मैं बाबा को बोलता हूं, बाबा सोने दो ना, सूर्य ऊपर में, चांद इधर इधर, मैंने बोला मैं तो थोड़ा सो जाऊं ना, अमृत वेला उठना है, ऐसा होता था। तो सोचे डॉक्टर जब आए तब एक बार पूछा, मैंने बोला ऐसा होता है क्यों, क्या बात है? वो कुछ शब्द बोला, मेडिकल शब्द मुझे याद नहीं है, बोला ये अच्छी लक्षण है। तो आप डॉक्टर साहब भी इधर है, उनको भी पता चलेगा ये क्या चीज है। मैं सोच वो पूछा था ये रोग तो नहीं है, बोला रोग नहीं है ये आरोग्य है, क्योंकि सतयुग में जाएंगे ना, जागति ज्योत होके जाएंगे, तो बोला ये एक अच्छी लक्षण की निशानी है। हाँ, ओम शांति।